फिर गजाश्व परीक्षा, हाथी घोड़ों की परीक्षा करने वाले, चार प्रकार के हाथी होते हैं, कई प्रकार के घोड़े होते हैं, इन सब की परीक्षा, नर नारी लक्षण सामुद्रिक, नर और नारियों के लक्षण बतलाने वाले सामुद्रिक, और ज्योतिष वैद्यक मंत्र तंत्र और औषधि, फिर यंत्रादि शास्त्रम काम शास्त्रम वा रसायन कुकोश स्त्री कुकोश, फिर स्त्री सेवादिशु श्रुतम काम क्रीड़ना आसन शास्त्रम अध्येति परान अध्यापयति अभ्यासयति। तो इन सब का जो अध्ययन करता है, दूसरों को पढ़ाता है और अभ्यास कराता है, कीदृक्षण कैसा होता हुआ, ये विशेषण ध्यान में रखने योग्य है। राग द्वेषाभ्याम परिणत, राग द्वेष रूप परिणत होता हुआ, काम क्रोध माया लोभ हास्य आदि स्त्री वेद आदि राग द्वेष ही परिणति प्राप्त, इन राग द्वेष रूप से परिणति को प्राप्त, एकत्वगत एक रूप होता हुआ, किमर्थम क्यों कर रहा है ऐसा, लोक वंचनार्थम जनानाम प्रतारणा निमित्तम, लोगों को ठगने के लिए यदि ऐसा करता है तो फिर वो स्वाध्याय निष्फल होता है। जो अपानं जानदि असुई शरीराद तच्छदो भिन्नम् जानगरूप स्वरूपम् सुसत्तम जानदे सर्वम्। जो अशुचि शरीर से आत्मा को तत्वतः भिन्न जानता है, कैसा जानता है, ज्ञायक रूप जिसका स्वरूप है ऐसा, सो सबम सत्यम जाने दे, वो सब शास्त्रों को जानता है, यानी सब शास्त्रों का सार यही है कि अपनी आत्मा को पहचान ले, उसको जिसने पहचान लिया उसको सब शास्त्रों का ज्ञान हो गया, ऐसा समझना चाहिए। तदुक्षम च इसमें नीचे आचार्य कुंदकुल स्वामी की कुछ गाथाएं हैं, जो ही सुदेन अभिगच्छति अपान मिणं तु केवलं शुद्धं तं सुद केवल मिसिणो बणन्ति लोयप्पदीवयरा, जो सुदनान सर्वम जानति सुद केवली तमाहुजिणा सुदनान माद सर्वम जम्मा सुद केवली तम्हा। समयसार की गाथा है, जो श्रुत के द्वारा केवल इस शुद्ध आत्मा को जानता है, उसको लोक प्रकाशक केवली भगवान जो परमर्षि हैं श्रुत केवली कहते हैं, और जो समस्त श्रुत ज्ञान को पूरे द्वादशांग को जानता है उसको जिनेंद्र भगवान श्रुत केवली कहते हैं, क्योंकि सारा श्रुत ज्ञान जम्मा आदर आत्मा रूप ही है, क्योंकि श्रुत ज्ञान आत्मा की पर्याय है, ज्ञान गुण की पर्याय है, इसलिए शुद केवली तम्मा, वो भी श्रुत केवली।
एक शुद केवली पे लगा है महाराज।
हाँ लगा
है, एक दो पे लगाते हैं।
हाँ, दो पे लगाना नहीं है।
कि जो आत्मा है वही शुद ज्ञान ही आत्मा है।
तो द्वादशांग की पार्टी होना अनिवार्य है,
मुनि
होना
अनिवार्य
है। भारत जी ने समयसार अनुशीलन में इसकी जो व्याख्या की है उसमें उन्होंने लोकांतिक देवों को भी लिया है शुद केवली, लेकिन लोकांतिक देव चतुर्दश पूर्व धरा लिखा, द्वादशांग धरा नहीं लिखा है, तो इसलिए मुनियों की बात है। जो न विजानदे अप्पम नान सर्वम शरीर दो भिन्नम सो न विजानदे सत्तम आगम पाठम कुणंतो भी। जो आत्मा को नहीं जानता, कैसे आत्मा को, शरीर तो भिन्नम शरीर से भिन्न, और कैसे नान सर्वम ज्ञान स्वरूपी, आत्मा को जो नहीं जानता सो आगम पाठम कुणंतो भी, वो आगम का पूरा पाठ करते हुए भी सत्थम न भी जान दी शास्त्र को नहीं जानता। क्या सौगमेंद्र को द्वादशांग का नहीं होता, नहीं वो वही चतुर्दश पूर्व वाली बात है। पांच प्रकार के स्वाध्याय दिए हैं टीका में, सब मुनि शास्त्र जिनोक्त शुद्ध ज्ञान नई बजाना थी नई वेदती, वो मुनि शास्त्र को जिनेन्द्र भगवान द्वारा कथित श्रुत ज्ञान को नहीं जानते नहीं समझते। कीदृक्सन कैसे है वो मुनि? आगम पाठम प्रवचन पठनम, आगम पाठ यानी प्रवचनों को पढ़ते हुए जिनोक्त श्रुत ज्ञान पठनम पाठनम च कुर्वन, जिनेन्द्र भगवान द्वारा प्रणीत श्रुत ज्ञान का पठन और पाठन करते हुए भी, अपिशब्दात अपिशब्द का मतलब भी का मतलब अकुर्वन, न करते हुए भी करते हुए भी वो कुछ नहीं जानते। वे कौन? सका यो योगी नापी जाना थी नापी वेती, जो नहीं जानते कम किसको? आत्मानम, जो आत्मा को नहीं जानते वो चाहे सब शास्त्र पढ़ ले लेकिन वो जिनवाणी को नहीं समझते, ये इसका तात्पर्य है। स्वचिदानंदम शुद्ध रूपम, शुद्ध चित्त रूपम, अपना जो चित्त आनंद स्वरूप है अपना शुद्ध चित्त रूप है उसको न जानने वाले मुनि सब स्वाध्याय करते हुए कराते हुए भी शास्त्र को नहीं समझते। कीदृक्षम कैसा है आत्मस्वरूप? ज्ञान स्वरूपम, ज्ञान स्वरूप है, यानी अभी तो अपना ये तो पुद्गल शरीर है, ये पुद्गल शरीर तो एक प्रकार का एक कवच है, अपना अपनी आत्मा जो है वो तो ज्ञान शरीर ही है। आवाज क्यों कर रहे हो भाई, कहाँ से आ रही आवाज? चक 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 आवाज हो रही है कुछ। कभी कभी होता है जिसको समझ में नहीं आती ना आत्मा की बात तो वो उस समय कुछ दूसरा काम करते रहते। ज्ञान स्वरूप शुद्ध बोध स्वभाव, ज्ञान स्वरूप कैसा है? शुद्ध बोध स्वभाव केवल ज्ञान दर्शनमय, केवल ज्ञान केवल दर्शनमय। पुनः कीदृशम और कैसा? शरीरात भिन्नम पृथक्त्व, शरीर से भिन्न पृथक रूप परमात्मा न जानाते, जो अपने परम आत्मा को नहीं पहचानता, यह सब किमपि शास्त्र में न जानते, वो कोई शास्त्र को नहीं जानता, इत्यर्थ ये इसका तात्पर्य। तथा ही खुलासा इसका है, पंच प्रकार स्वाध्याय, स्वाध्याय पांच प्रकार, वाचना प्रचना अनुप्रेक्षा नाय धर्मोपदेश, यो गुरु पाप क्रिया विरत, जो गुरु पाप क्रिया से विरत है, अध्यापन क्रिया फल नापेक्षित, अध्ययन कराने के क्रिया का फल नहीं चाहते, स गुरु शास्त्रम पाठयति, वो गुरु शास्त्र को पढ़ाते हैं, शास्त्र से अर्थम वाच्यम कथयति, शास्त्र का जो अर्थ है जो उसका वाच्य यानी तात्पर्य है उसको कहते हैं, ग्रंथार्थ द्वयम च व्याख्याति, ग्रंथ और अर्थ इन दोनों का व्याख्यान करते हैं, एवं त्रिविधम अपि शास्त्र प्रदानम पात्राय शिष्याय ददाति, इस प्रकार तीनों प्रकार का जो शास्त्र प्रदान है वो पात्र शिष्य के लिए प्रदान करते हैं, उपदिशति उपदेश देते हैं, स वाचना कथ्यते उसको वाचना कहा जाता है। प्रश्ना प्रश्न, प्रश्ना का मतलब पूछना प्रश्न करना, अनुयोग शास्त्रार्थम जानन्नपि पृच्छति, शास्त्र के अर्थ को जानते हुए भी प्रश्न करता है, किमर्थम क्यों करता है? संदेह विनाशाय, क्योंकि उसमें अगर कोई संदेह हो अपने हृदय में तो प्रश्न करने पर उस संदेह का विनाश होता है। निश्चितोप्यर्थ किमर्थम पृच्छति, फिर शंका कर रहा कोई कि जो अर्थ अपने निश्चय में आ चुका है अपन जानते हैं अच्छी तरह निश्चित कर चुके हैं तो दोबारा पूछने की क्या आवश्यकता है? तो आचार्य कहते हैं ग्रंथार्थ प्रबलता निमित्तम, ग्रंथ और अर्थ में प्रबलता आ जाती है, गुरु के मुख से उसी अर्थ को दोबारा सुन लो प्रश्न करके तो फिर अपने ज्ञान में ग्रंथ और अर्थ के विषय में प्रबलता आ जाती है। सा प्रचना वह प्रचना निजोन्नति पर प्रतारणोपहासादि निमित्तम यदि भवति, वो पृछना अगर अपनी पढ़ाई के लिए या दूसरों के प्रताड़ना के लिए दूसरों को ठगने के लिए अथवा उपहास आदि के लिए यदि भवति, यदि हो तदा संवरार्थिका न भवति, मैंने कोई ऐसा प्रश्न पूछ लिया कि जिससे किसी की हंसी हो जाए, बहुत चतुराई से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कई बार, मैंने अपने को पता है कि फलाना व्यक्ति कैसा है और उसको लक्ष्य करके ऐसा प्रश्न सभा में पूछ लिया कि सब लोग उसकी तरफ देखने लगे और हंसने लगे, वो बेचारा ऐसे सिर नीचे करके बैठ गया, तो उसकी हंसी उड़वाने के लिए अगर शंका करते तो प्रश्न स्वाध्याय नहीं है और वो संवर के निमित्त भी नहीं हो सकता, अथवा किसी की प्रताड़ना के लिए अर्थात किसी को ठगने के लिए अगर कोई शंका की जाए या फिर अपनी बढ़ाई के लिए शंका की जाती है प्रश्न की जाती है तो फिर वो निर्जरा और संवर के लिए सहायक नहीं है। परिज्ञातार्थस्य एकाग्रेण मनसा यत् पुनः पुनरभ्यसनम अनुशीलन सानुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा किसको कहते हैं? जाने हुए पदार्थ का एकाग्र मन से जो बार बार अभ्यास किया जाता है, अनुशीलन किया जाता है, चिंतन मनन किया जाता है, वह अनुप्रेक्षा। अनित्यादि भावना चिंतनम अनुप्रेक्षा, अनित्यादि भावनाओं का चिंतन भी अनुप्रेक्षा। अष्टस्थानोच्चार विशेषेण यत् शुद्धम घोषणम पुनः पुनः परिवर्तन से आमनाय। फिर आमनाय नाम का स्वाध्याय किसको कहते हैं? उच्चारण के जो आठ स्थान होते हैं वहां से बार बार शुद्ध उच्चारण करते रहना वो आमना है। माने पाठ करते हो तो पाठ को बिल्कुल उन आठ स्थानों से जिस अक्षर का जहां से पाठ निर्धारित है वहीं से पढ़ना, वो आमनाय नाम का स्वाध्याय है। आमनाय का अर्थ केवल कंठस्थ करना मात्र नहीं, कंठस्थ करके उसका शुद्ध उच्चारण करना आमनाय है। पर यहाँ घोषणम लिखा है, घोषणम का अर्थ वचन द्वारा हो गया, ये वाचिक स्वाध्याय का भेद है आमना है। जैसे तत्वर सूत्र के सूत्र पढ़ रहे हैं तो शुद्ध आठ उच्चारण स्थानों से पढ़ो तो फिर वो आमनाय नाम का स्वाध्याय हो जाएगा। दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील व्रते श्वणती चारो वीक्षण ज्ञानोपयोग संवेग शक्ति तस्त्याग तपसी साधु साधु समाधि वैया वृत्तिकरण। ऐसे करके सूत्र का सही पाठ करना, आठ स्थान है उच्चारण के, आपको जानकारी होगी। उसके कंठ है एक अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है, नौ वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है। अ आ क ख ग घ ङ फिर ह और नमः का जो विसर्ग है वो, ये नौ उच्चारण कंठ से होता है। फिर एचु यशानाम तालु, तालु जो होता है जीभ के ऊपर वाला जो भाग होता है पैलेट पे जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, वो ई ई च छ ज ज ञ और य और श इन नौ का उच्चारण तालु के सहारे होता है, वहाँ दबाव दे करके किया जाता है। फिर ऋटुरषाणाम दन, ऋटुरषाणाम मूर्धा, मूर्धा यानी पूरे मस्तक से जो स्वर निकलता है वो ये है। ऋषि का री और फिर दीर्घ री भी आता है संस्कृत बारह खड़ी में, री और री। फिर ट ठ ड ढ ण, फिर र और षटकोण वाला श, इनका स्थान मूर्धा है यानी मस्तक है पूरा। और फिर ऋतुलसानान दंता, री ये भी स्वर है, ये दो स्वर हो गए और फिर उसके बाद त थ द ध न और उसके बाद ल और स, इन नौ का उच्चारण दांतों से होता है, इसलिए जिनके दांत नहीं होते उनका ये उच्चारण नहीं हो पाता। इसमें आया था, वैसे हमने वहाँ पर उसका वर्णन नहीं किया था रामकथा में, तो ग्रंथ में आया था कि वो जो बूढ़ा कंचुकी था ना दशरथ राजा से बोलता है कि अब मेरे ये सब निकलते भी नहीं है, ये शब्द स नहीं बोल पाता मैं क्योंकि दांत पूरे गिर चुके हैं। तो दांतों से इन नौ का उच्चारण होता है। और उसके बाद उपूपद्मानी या नाम ओष्ठ उ, फिर प फ ब भ म और एक उपद्मानी भी होता है। उपद्मानी का मतलब ये है कि अभी वर्तमान में तो उसका प्रचलन नहीं है लेकिन उसका उच्चारण ऐसा होगा, जैसे उदाहरण के लिए जनह पृच्छति। अब इसमें अगर विसर्जनी संधि कर दो, विसर्ग का अगर लोप कर दिया जाए तो पृच्छति के प्री के ऊपर एक गजकुंभ आकृति हो जाएगी। मैंने ऐसे बी लिखते हैं अंग्रेजी में, उसको ऐसे लेटा दो तो ये ऐसा आकार हो गया, हाथी के कुंभ की आकृति, हाथी का सिर जो रहता है ना उसके ऊपर वाला भाग, तो वो जो है उपद्मानी है। यहाँ जनह पृच्छति, वो जनह के ह का लोप हो गया विसर्ग का और फिर अब जो उच्चारण होगा जनह पृच्छति, जनह पृच्छति, ये डबल प जैसा उच्चारण होगा, तो इसके लिए होठ की जरूरत होती है। तो ये उच्चारण स्थान हो गया, कितने उच्चारण स्थान हो गए? पांच, कंठ तालु मस्तक दांत और होठ। अब इसके बाद जिह्वा मूलस्य जिह्वा मूलम, जिह्वा मूली जो होता है जैसे दुख, दुख में दुख ऐसा नहीं बोलते, वो आधे क जैसा उच्चारण होता है दुख, ख प, ये अगर अकेले उसका उपद्मानी का उच्चारण देखो तो आप प, ये उपद्मानी है, प फल में भी वैसे ही उच्चारण से वृक्ष फलति, वृक्ष फलति, ये उपद मानी हो गया। और फिर जिह्वा मुनि क्या है, दुख, उसके ऊपर से उसके बाजू का विसर्ग अपन लिखने में लिखते हैं, लेकिन कायदे से उसके ऊपर क्रॉस बनाना चाहिए। क्रॉस का मतलब वज्राकृति वर्ण उपद्मा, जिह्वा मूलि है, वो जिह्वा मूलि कहलाता है। तो उसको कैसे कह करोती, कोई भी ऐसे विसर्ग वाला शब्द ले लो आप, क के आगे रख लो या ख के आगे रख लो, मनुष्य खादती, अब मनुष्य खादती कर लो तो उसमें से विसर्ग का लोप करके ख के ऊपर क्रॉस बना दिया तो वो जिह्वा मूलि हो गया। जिह्वा मूलि का उच्चारण स्थान जीभ की जड़ है। दुख, दुख बोलते समय ये जीभ की जो जड़ है वहां पर एक स्पंदन आता है, ख, क, ये जिह्वा मूलि। फिर वकारस्य दंतोष्टम, व का जो उच्चारण है वो दंतोष्ट है, ऊपर के दांत और नीचे के होंठ, व, उसके बिना नहीं हो सकता। व बोलने के लिए ऊपर के दांत चाहिए और नीचे का होंठ चाहिए। कितने उच्चारण स्थान हो गए, 5, 6, 7 हो गए, इसमें 8 दिए ना, तो 8वां यमगणा नाम नासिका च, ञ, म, ङ, ण और न, ये जो 5 वर्गों के आखिरी अक्षर होते हैं इनका उच्चारण स्थान नासिका भी है। वो जो 5 स्थान है वो तो ही है, उनके साथ नासिका भी है। तो ऐसे ही 8 उच्चारण स्थान होते हैं, इन उच्चारण स्थानों से शुद्ध उच्चारण करना ये आमनाय नाम का साध्य है, और इसी को अर्थ शुद्ध, ये व्यंजन शुद्ध बोलते हैं, शब्दाचार। तो ये याद रखने की चीजें हैं, नाम लिख लो आप चाहो तो 8 हो, कंठ, तालु। अपन कहते हैं कि जीभ से सब कुछ बोला जाता है, लेकिन नहीं, ये जो अक्षर होते हैं इन 8 स्थानों से बोले जाते हैं। जिह्वा बड़ी उतावली बोले ताल कुताल, आप बोल भीतर रहे थप्पड़ खावे गाल। क्या बोला था, सबसे पहला कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा यानी मस्तक, चौथा दांत, पांचवा दोनों होंठ, फिर छठा जिह्वा मूल, सातवा दांत और होंठ, और 8वां स्थान जो है नासिका च, नासिका। दृष्टा दृष्ट प्रयोजन अनपेक्ष, प्रत्यक्ष और परोक्ष किसी उद्देश्य की अपेक्षा न रखकर उन्मार्ग विच्छेदना है, उन्मार्ग का नाश करने के लिए, संदेह छेदनार्थम, संदेह को नष्ट करने के लिए, अपूर्वार्थ प्रकाशनादि कृते और अपूर्व अर्थ को प्रकट करने आदि के लिए, केवलम आत्माश्रयोर्थम, केवल अपने आश्रित आत्मश्रेय, केवल आत्मकल्याण है प्रयोजन जिसका, उसके लिए महापुराण आदि धर्म कथा धनुर्कथनम, महापुराण आदि संबंधी जो धर्म कथाएं हैं उनका अनुकथन करना, बारंबार उनका वर्णन करना, उन कथाओं का बार बार कथन करना, फिर स्तुति देव वंदनादिकम च, और स्तुति और देव वंदनादिक का भी व्याख्यान कर देना, धर्मोपदेश है, ये धर्मोपदेश है। ये जैसे शलाका पुरुषों के जो चरित्र होते हैं उनका सबका वर्णन महापुराण आदि में उपलब्ध हो जाता है, स्तुति और वंदना आदि का भी जो वर्णन करोगे आप वो भी धर्मोपदेश में होगा, धर्मोपदेश हो गया। भक्तावर का स्वाध्याय करा दिया, धर्मोपदेश हो गया। आमना है तो भक्तावर का केवल पाठ करोगे तो धर्मोपदेश है। जैसे इसमें प्रवचन सार में है ना, जिनेन्द्र भगवान की पूजा का उपदेश करना मुनि के लिए, मुनि जिनेन्द्र भगवान की पूजा का उपदेश करे तब शुभोपयोगी है, और शुभोपयोगी है तो वो जो उपदेश है वो धर्मोपदेश स्वाध्याय हो गया। ऐसे अस्य स्वाध्याय से किम फल है, इस स्वाध्याय का फल क्या है, प्रज्ञातिशयो भवति, प्रज्ञा का एक अतिशय प्रकट हो जाता है स्वाध्याय के फल स्वरूप, यानी अपनी बुद्धि विलक्षण हो जाती है। प्रशस्ताध्यवसायश्च संजायते, अपने भाव जो होते हैं परिणाम वो प्रशस्त हो जाते हैं, यानी विशुद्धि बढ़ जाती है। और परमोत्कृष्ट संवेग संपद्यते, और परमोत्कृष्ट संवेग यानी परम और उत्कृष्ट संवेग, संवेग का अर्थ कल आया था धर्म और धर्म के फल में परम प्रीति होना, वो एकदम उत्कृष्टता को प्राप्त हो जाती है। और प्रवचन स्थितिर जागृति, स्वाध्याय में जो स्थिरता है वो जागृति माने बनी रहती है। तपो वृद्धिर बोभोति, और तपों की जो वृद्धि है वो बोभोति माने जगमगाने लग जाती है। फिर अतिचार विशोधनम वरवर्ती, अतिचारों की जो शुद्धि है वो वर्तती है, यानी अतिचारों से बचा रहता है स्वाध्याय करने के कारण। संशय छेदो जा घटी थी, संशयों का छेदन जा घटी थी बहुत अच्छी तरह से घटित होता है। फिर मिथ्यावादी भयाद्यभाव भवती, मिथ्यावादियों के भय अधिक का अभाव हो जाता है। कई बार ऐसा डर लगता रहता है ना कि कोई अगर अन्य मति आकर के मेरे से कुछ पूछेगा जैन धर्म के बारे में, मैं क्या जवाब दूंगा। स्वाध्याय करने से सब जवाब मिल जाते हैं, क्योंकि आज जो ग्रंथ अपने पास उपलब्ध है उसमें विश्व की सब शंकाओं के लगभग समाधान उपलब्ध है। कोई विषय नहीं छोड़ा आचार्यों ने कि जिसके समाधान न हो, उसमें इतना अपार भंडार रख कर गए हैं। अतः व्युत्सर्ग तपो विधान गाथा त्रेणा, अब व्युत्सर्ग तप का अनुष्ठान तीन गाथाओं के द्वारा बतलाएंगे। काव्य और गद्य पाठ तो नहीं, नहीं ऐसा नहीं। आमनाय का अर्थ काव्य पाठ मात्र नहीं, आमनाय जो है वो तो किसी भी ग्रंथ का पाठ हो, गद्य रूप हो पद्य रूप हो, कहीं शुद्ध उच्चारण के साथ करना। तत्वार्थ सूत्र, तत्वार्थ का वाचन में तो बताया ना कि वहाँ शब्दाचार भी होगा अर्थाचार भी होगा और दोनों भी होंगे, ये लिखा ना।
आमनाय में भी शब्दाचार और अर्थाचार
नहीं हो रहा है, आमनाय में केवल शब्दाचार है और उच्चारण पूर्वक है वो तो खैर शब्दाचार में उच्चारण तो आवश्यक है, जिस छंद की जो लय है उसी में पढ़ना पड़ता है। जलमललितगतु दुस्सह वाही सुनिपड़ी यारो, मुहुधोवणादि विरु भोयण से जादि निरवेखु, ससरूव चिंतन रहो दुज्जन सुयनान जो मज्जत्थो, देहे विनिम्म मत्तो काओ सक्को तवो तस्य। उनका वो कायोत्सर्ग तप होता है वित्सर्ग तप, जो जल मल लिप्त गत्तो, जल का अर्थ होता है सारे शरीर पर पसीने पर जो धूल चिपक जाती है वो, और मल यानी शरीर में जो मलिनता रहती है। अब कई प्रकार के मल हो सकते हैं, नवद्वार से निकलने वाले नासिका मल, अक्षी मल, दंत मल आदि सब, इनसे लिप्त हो गया है शरीर जिनका। और दुस्सहवाहीसु, सहन करना जिनका कठिन है, ऐसी व्याधियों में भी निपड़ी आरो, कोई औषध सेवन नहीं करते, कोई उपचार नहीं कराते, कोई प्रतिकार जो नहीं कराते। और मुंह धोवण आदि विरव, और मुंह आदि धोने से भी जो विरक्त है, माने इतने शरीर के प्रति निष्प्रय हो गए कि वो कभी मुंह भी नहीं धोएंगे। और भोजन सेज्जा लेने को, भोजन के प्रति भी कोई अपेक्षा नहीं है, सेज्जा मतलब जहाँ सो रहे हैं उस स्थान में भी कोई अपेक्षा नहीं रखते, और अपने स्वरूप के चिंतन में रत रहते हैं, तत्पर रहते हैं। और दुर्जन सुयणान, दुर्जन और सुजनों के प्रति जो मध्यस्थ रहते हैं, समता भाव रखते हैं, दुर्जन हो तो भी बराबर है, सुजन हो तो भी बराबर है। और देहे भी निम्ममत्तो, और शरीर में भी कोई ममता नहीं रखते, ये मेरा है, उनका ये वित्सर्ग नाम का तप होता है, कायोत्सर्ग होता है। बाकी स्पष्ट है, जो देह धारण परो ओयरणादि विशेष संसत्तो, बाहिर व्यवहार रहो काओ सगो कुदो तस्। जो शरीर को धारण करने में तत्पर है, माने शरीर की हमेशा संभाल करते रहते हैं, और उपकरण आदि के प्रति विशेष संसक्त है, ज्यादा आसक्त है, माने पिछी कमंडल आदि सब जो उपकरण होते हैं उनमें बहुत ज्यादा जिनका मन लगा रहता है, और बाहर व्यवहार रहो, और बाह्य व्यवहारों में जो लगे रहते हैं तस् काउ सगुकुदो, उनका ये विसर्ग तप कैसे हो सकता है, यानी उनके पास ये तप नहीं हो सकता। अब इसकी टीका अपन देख सकते हैं, तस्य तपस्विना कायोत्सर्गाख्यम तपोविधानम कुतः कस्मात् भवति, उन तपस्वी के पास कायोत्सर्ग नाम का जो तपोविधान है वो कैसे हो सकता है, न कुतो भी भवति, नहीं हो सकता, किसी प्रकार नहीं हो सकता। तस्य कस्य, वो कैसे है तपस्वी, यह पुमान, जो मनुष्य जो साधु देह पालन पर, देहस्य शरीरस्य पालनम स्नान भोजनादिना रक्षणम पोषणम तत्र पर, स्नान भोजन आदि के द्वारा रक्षा करने में पोषण करने में तत्पर है। पुनरपि की दृक्षण, और कैसे है, उसमें स्नान शब्द दिया है, स्नान का क्या तात्पर्य, एक अभ्यंग स्नान भी होता है, माने तेल मर्दन आदि के द्वारा भी शरीर साफ सुथरा हो जाता है, जल से स्नान न करते हुए भी अभ्यंग स्नान संभव है। तो पुनरपि की दृक्षा, और कैसे है विसाधु, तो उपकरणादि विशेष संसक्ता है, उपकरणानि, उपकरण कौन से, पिच्छिका कमंडलु पुस्तकानि, कमंडलु स्त्रीलिंग शब्द है संस्कृत व्याकरण में, कमंडलु स्त्रीलिंग शब्द है, यदि ऊ दीर्घ हो तो यहाँ पर ह्रस्व छप है, तो पिच्छिका कमंडल पुस्तक, आदि शब्द, आदि शब्द से क्या लेना, आसन, चक्वलो, आसन और चक्वल मतलब कि जिसमें वो शास्त्र रखते हैं, क्या बोलते हैं उसको अभी, रहल,
रहल,
फिर उच्छीर्ष फलक, उच्छीर्ष फलक का मतलब कि जो ऐसा बैठने का पाटा है जो ऐसे उठ जाता है और फिर उसमें अपन टिक भी सकते हैं, उच्छीर्ष फलक, फिर कर्तरिका कैंची, छुरी का छुरी, फिर बाल नख ग्राहक आदय, और बाल और नख को ग्रहण करने वाले ये ऐसे जो उपकरण होते हैं, इनको जो ग्रहण कर लेते हैं, तेषाम विशेष, उनके भेद क्या है, चित्त चमत्कार कारण समर्थ है, वो अपने मन में कुछ चमत्कार के कारण बनने में समर्थ है, माने तत्र संसक्त, वो अपने मन में आसक्ति उत्पन्न कर देते कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छा कटर है, या फिर ये ऐसा वैसा, तो मन उसमें प्रीति को प्राप्त हो जाता है। तो उसमें अगर कोई साधु आसक्त हो जाते हैं, पुनर्पिक्री दीक्षा, और कैसे रहेंगे वो साधु, बाह्य व्यवहार रहता है, बाह्य व्यवहार में लगे रहते हैं, कौन से बाह्य व्यवहार में, जिन कृत समहोत्सव पूजा यात्रा प्रतिष्ठा दान मान आदि लक्षण, जिनेन्द्र भगवान के लिए की गई जो महोत्सव सहित पूजा है अथवा यात्रा है, शोभा यात्रा आदि, और प्रतिष्ठा महोत्सव है, दान मान आदि जो है, तत्र रत आसक्त है, उसमें अगर कोई साधु आसक्त है, तथा ही उसका खुलासा क्या है, विविधानाम बाह्याभ्यंतराणाम बंध हेतुनाम दोषाणाम उत्तमस त्यागो वित्सर्ग, अनेक प्रकार के जो बाह्य और आभ्यंतर बंध के हेतुभूत दोष हैं उन सभी का त्याग कर देना वित्सर्ग है। आत्मना अनुपात्तस्य, अपने आत्मा द्वारा जो स्वीकार नहीं किया गया, एकत्वम अनापन्नस्य, एकत्व को न प्राप्त हुए आहार आदि, आहार आदि का त्यागो बाह्योपदि वित्सर्ग, बाह्य त्याग हो गया, फिर क्रोधमान माया लोभ मिथ्यात्व हास्य शोक भय जुगुप्सा आदि दोष निवृत्ति ही आभ्यंतर उपदित वित्सर्ग, ये अंतरंग के जो विकारी भाव है इनको छोड़ देना, अंतरंग त्याग हो गया, कायत्यागश्च आभ्यंतर उपदित वित्सर्ग, और काय को छोड़ना भी, कायोत्सर्ग करना भी अंतरंग वित्सर्ग तप है। सच द्विविध, वो दो प्रकार का होता है, यावत जीवन नियत कालश्चेति, जीवन पर्यंत अथवा निश्चित काल तक, तत्र यावत जीवन त्रिधा, जीवन भर अगर शरीर का त्याग करना है जीवन भर के लिए, तो वो तीन प्रकार से किया जा सकता है, भक्त प्रत्याख्यानम, भक्त प्रत्याख्यान, जगन्नीन अंतर्मुहूर्तम उत्कृष्टेन द्वादश वर्षाणी, कम से कम अंतर्मुहूर्त के लिए त्याग कर दो तो शरीर छूट सकता है, और अधिक से अधिक 12 वर्षों तक का त्याग हो सकता है, तो 12 वर्ष में शरीर छूट जाता है, अवान्तर और मध्यम, और बीच में जितने होंगे उसके भेद वो मध्यम हो जाएंगे, 12 वर्ष से कम अंतर्मुहूर्त से अधिक, उभय उपकार सापेक्षम भक्त प्रत्याख्यान मरणम, और भक्त प्रत्याख्यान मरण जो होता है वो दोनों के उपकार की अपेक्षा रखता है, यानी स्वयं भी साधु अपने शरीर की देखरेख करते हैं और फिर दूसरे सेवा करने वाले भी उनकी सेवा करते हैं, भक्त प्रत्याख्यान, फिर पर प्रतिकार निरपेक्षम आत्मोपकार सापेक्षम, इंगिनी मरणम। इंगिनी मरण किसको कहते हैं? कि जब संलेखना के समय दूसरों से सेवा न कराए और स्वयं अपने को अगर कहीं जरूरत हो तो फिर अपने ही हाथों से किसी प्रकार से वो सेवा कर लेते हैं, दूसरों से सेवा का त्याग करा देते कर देते हैं, तो वो इंगिनी मरण है। और नहीं, उसके उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी आगम के आधार से या किसी निर्यापक आचार्य के निमित्त से ये जानकारी प्राप्त की जाती है कि अभी हम हमारी आयु कितनी शेष है, या निमित्त ज्ञानी से भी जान सकते हैं। तो उसमें अगर 12 वर्ष से अल्प रहती आयु या 12 वर्ष तक की अधिक से अधिक होती है तो फिर इस प्रकार से विधि कर सकते हैं। लेते हैं ना, तो उसमें ऐसा पूर्वाभास भी होता है ना, कुछ ऐसे पत्रिकाओं में योग होते हैं, कुछ ऐसे हस्तरेखाओं में भी योग रहते हैं संलेखना के बारे में, तो उससे जानकारियाँ हो सकती है। जानने वाले आज भी हैं, उसका अभाव नहीं है। शनि और चंद्र ग्रह के ऐसे कुछ योग होते हैं जिससे उस साधक को पहले से आभास हो जाता है कि मेरा कितना समय शेष है। सबको नहीं होता लेकिन कुछ साधकों को हो जाता है। उन्होंने सही समय पर कर लिया पूरा कार्य। विशुद्धि के माध्यम से और पूर्व भाव के साधना के माध्यम से भी, दोनों बातें। हम लोगों का जब कुंडलपुर चातुर्मास हो रहा था तो पटेरा में एक व्यक्ति को मालूम पड़ गया था कि 15 दिन में मेरा मरण है, लेकिन उसने संलेखना नहीं की। संलेखना के भाव होना अलग है, तो विशुद्धि से ही मालूम पड़े ऐसा नियम नहीं है। बिना विशुद्धि के भी मालूम हो सकता है, लेकिन वो क्या ऐसा क्षय उपशम रहता है उनके ध्यानावरण का कुछ।
अमित सागर जी ने सिलेक्शन की करोड़पति थे, उनको दीक्षा
दी थी,
तो बड़े गांव की बात है, वही बताए थे कि वो कह रहे भैया हम ही कंप्यूटर जा रहे हैं, तो अब हम जा रहे हैं, वो ऊपर चले गए अपना छत के ऊपर जाकर बैठ गए। वो खाली ऐसे ही कह रहे हैं कि जा रहे हैं
हम, तो खाली फिर और फिर इन्होंने सिद्धप्पा महाराज ने तो बताया था कि मैं अमुक तिथि पर सवेरे सूर्योदय के इतने समय बाद मेरा समय पूर्ण हो जाएगा, और बिल्कुल उसी समय कुंभोज बाहुबली में उनकी संलग्न हुई। बढ़िया रंग से मुनिराज थे। विनोबा भावे ने बताया दीपावली को। तो अंत की 36 दिन की थी, लेकिन 12 वर्ष की जानकारी नहीं है अभी, हमें जानकारी नहीं इसके बारे में। तो इंगिनी मरण में दूसरों की सेवा स्वीकार नहीं की जाती। अभ्यास किया था, इंगिनी मरण जो होता है उत्तम संगनन में होता है, ऊपर के 3 संगनन वाले मुनि करते हैं, लेकिन अभ्यास किया था वो तो उस वगैरह पंचम काल में, तो भक्त प्रत्याख्या नहीं है। फिर उभयोपकार निरपेक्षम प्रायोपगमन मरणम, और तीसरी जो संलेखना होती है वो दोनों के उपकार से निरपेक्ष होती, माने स्वयं भी अपनी सेवा नहीं करेंगे और किसी और से भी नहीं कर रहेंगे, वो प्रायोपगमन मरण होता है। नियत काल हो द्विविधा, नियत काल वाला जो है दो प्रकार का काय उत्सर्ग है, नित्य काल है नैमित्तिकश्च, नित्य आवश्यकाद है, नित्य काय उत्सर्ग जो होता है वो आवश्यकादि संबंधी है, और नैमित्तिक पार्वणी क्रिया। नैमित्तिक कायोत्सर्ग कौन सा? चतुर्दशी का जो कायोत्सर्ग होगा या अष्टान्निका का जो कायोत्सर्ग होगा वो विशेष हो जाएगा। निषिध्या क्रियादयश्च, और निषिध्या क्रिया जो होती है जैसे किसी साधु की संलेखना के स्थल पर साधु चले जाए तो वहां पर उनको 25 श्वास का कायोत्सर्ग नियामक है, तो वो नैमित्तिक कायोत्सर्ग हो गया। वो हर जगह नहीं कर सकते, जहाँ किसी की संलेखना हुई अथवा कोई मुनिराज ने सिद्ध पद को प्राप्त किया है, मोक्ष निर्माण स्थल है कोई, तो वहां जाकर के वो कायोत्सर्ग वैसा करेंगे तो वो भी नैमित्तिक है, न करे तो प्रायश्चित है। मैंने तारंगा जी में अगर मंदिर की वंदना किए बिना साधु लौट जाए तो प्रायश्चित नहीं है, लेकिन चरणों की वंदना किए बिना उस कायोत्सर्ग के बिना लौट जाए तो फिर प्रायश्चित है, क्योंकि सिद्ध क्षेत्र में जाकर के नियामक क्रिया है, ये नैमित्तिक क्रिया कह रहे थे। क्रिया करने वंदनाया 32 दोष, क्रियाओं के करते समय वंदना के 32 दोष हैं, अनादर स्तब्ध प्रविष्ट परिपीड़ित दूलायितादय, ऐसे 32 दोष होते हैं, इसमें पूरे गिनाए नहीं है। फिर क्रिया करने कायोत्सर्ग से द्वादशिंशत दोष, क्रियाओं को करते समय कायोत्सर्ग के भी 32 दोष हैं, माने 32-32 दोष वंदना के भी होते हैं, कायोत्सर्ग के भी होते हैं। वित्सृष्ट बाहु युगले चतुरंगुलांतरित समपादे सर्वांग चलन रहिते कायोत्सर्गे भी दोषा स्यु, ऐसे कायोत्सर्ग में जहाँ अगर दोनों भुजाओं को ऐसे नीचे लटका दिया है और दोनों पैरों के नीचे चार अंगुल की दूरी करके समतल रख दिया है और सब शरीर को भी सम अमृत ज्वाय तस्थान मास्ताय रचित स्थिति ही, कायोत्सर्ग का स्वरूप क्या बताया कि पादाग्रम वितस्त्यंतर, एक बीते के अंतराल में पैरों का आगे वाला भाग पंजा होना चाहिए और पार्षणी का अर्थ होता है एड़ी, एड़ी कितना होना चाहिए, तत्त्रयंशांतर उसके तीसरे अंश प्रमाण होना चाहिए। तो एक बीता जो है उसका तीसरा अंश कितना होगा, चार अंगुल, क्योंकि एक बीता 12 अंगुल का होता है। तो पंजे जो होंगे पैर के एक बीते के फासले में होंगे और एड़ियां जो है चार अंगुल दूर होंगी। और सम मृच्वायत स्थानम आस्था है, सम और रिजु यानी सीधे खड़े हो जाना, वो है कायोत्सर्ग, इत्युक्त कायोत्सर्ग, इस प्रकार कायोत्सर्ग बताया गया है। फिर इसमें जो दोष है उनके नाम बता रहे हैं, घोटक पादम लता वक्रम स्तंभावष्टम्भम कुड्याश्रितम मालिकोद्वहनम शबरी गुह्य गुहनम शृंखलितम लंबितम उत्तरितम स्तन दृष्टि काकावलोकनम खलीनितम युगकंधरम कपित्थ मुष्टि शीर्ष प्रकंपनम मूक संज्ञा अंगुलिचालनम भ्रूक्षेपम उन्मत्तम पिशाचम अष्ट दिगवलोकनम ग्रीवोन्नमनम निष्ठीवनम अंगस्पर्शनमिति चरित्र सार आदि मंतव्य, आदि दोष जो है वो चरित्र सार आदि में जान लेने चाहिए। किमर्थम वित्सर्ग, वित्सर्ग क्यों किया जाता है, निसंगत्वम परिग्रह रहित बना, निर्भयत्वम निर्भीकता, जीविताशा 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 लिखा है, जीविताशा होना चाहिए, व में एक ही मात्रा, जीवन की आशा का निराशा माने त्याग, दोषोच्छेद, दोषों का उच्छेद करने के लिए मोक्ष मार्ग भावना परत्वम, मोक्ष मार्ग की भावना में तत्परता आ जाए इत्याद्यर्थम, इत्यादि के लिए कायोत्सर्ग किया जाता है। अब इसमें घोटक पाद का अर्थ क्या होता है कि कायोत्सर्ग करते समय अगर एक पैर, जैसे घोड़ा उठा लेता है ना अपना एक पैर थोड़ा सा, वैसे अगर साधु एक पैर उठा ले तो दोष लगेगा। लता वक्रम का अर्थ क्या होता है कि जैसे लता झूलती है तो वैसे अगर शरीर को ऐसे ढीला से झुला दे तो फिर कायोत्सर्ग के समय उनको दोष लगेगा। स्तंभावष्टम का अर्थ होता है खंभे से टिक करके कायोत्सर्ग करें तो स्तंभावष्टम नाम का दोष। कुड्याश्रितम यानी दीवार, दीवार से टिक करके कायोत्सर्ग करते हैं तो कुड्याश्रित दोष लगता है। मालिकोद्वहन का अर्थ होता है कि कहीं कोई ऐसे स्थान पर जहाँ सिर से कुछ छू रहा है, छोटा सा कमरा है और फिर सिर में कुछ वो लकड़ी जैसी रहती है ना छोटे छोटे गांव में, तो उसमें ऐसे सिर टिका करके कायोत्सर्ग कर लेंगे तो फिर उनको वो दोष लगेगा। माने कितने प्रकार के दोषों की संभावना रहती है। फिर शबरी गुह्य गुहनम, जैसे वो शबरी यानी भीलनी होती है वो इस प्रकार ऐसे शरीर को सिकुड़ करके खड़ी हो जाती है तो उस प्रकार से खड़े होकर कायोत्सर्ग करना तो ये शबरी गुह्य गुहनम नाम का दोष है। श्रृंखलितम लंबितम, लंबितम का मतलब ऐसे लंबा शरीर, मतलब अंगड़ाई लेने जैसा होता है ना वैसे लंबा करके करना। उत्तरितम स्तन दृष्टि माने छाती की तरफ देखते हुए कायोत्सर्ग करना। काकावलोकन कौवा जो रहता है ऐसे एक तरफ देखता रहता है तो एक तरफ देख कर कायोत्सर्ग करना। फिर खलीनितम युगकंधरम कपित्थ मुष्टि, युगकंधरम ऐसे जैसे बैल के कंधों के ऊपर वो जुआ डालते हैं ना, मतलब वो लगाते हैं तो वैसे कंधे करके कायोत्सर्ग करने से वो दोष लग जाता है। फिर कपित्थ मुष्टि यानी एक कैथे का फल होता है कपीट, उसके समान अपनी मुट्ठी को ऐसे बांध करके करना, एकदम फल जैसा आकार हो जाए मुट्ठी का, तो वो भी एक दोष है। शीर्ष प्रकंपनम सिर को ऐसे से हिलाना कायोत्सर्ग करके करते समय। मूक संज्ञा माने जैसे गुंगा इशारे करता है ना वैसे इशारे करना, वो भी एक कायोत्सर्ग का दोष है। फिर अंगुली चालनम उंगलियों को ऐसे ऐसे चलाते हुए कायोत्सर्ग करना, ये भी एक दोष है। भ्रूक्षेपम ये भ्रुकुटियों का शेप करना माने उसमें विकृतियां लाना, वो भी एक दोष है। उन्मत्तम पिशाचम। अब जैसे पिशाच से जो ग्रसित होता है वो ऐसे से ढूंढता है, गुजराती में बोलते हैं इसको, कांपता है, तो वैसा करना। तो ये सब कायोत्सर्ग के दोष है। अष्ट दिग अवलोकनम, आठ दिशाओं में अवलोकन करना। कायोत्सर्ग कर रहे हैं, अचानक पीछे से आवाज आई तो एकदम ऐसे मुड़ करके देखने लग गए और यहाँ चालू है कायोत्सर्ग, तो वो भी एक दोष है। किसी भी दिशा में देखना। ग्रीवोन नमनम, तो ग्रीवा को उन्नमन करना है ऐसे करके सामने की तरफ करके कायोत्सर्ग करना। निष्ठीवनम, अगर मुंह के अंदर कोई कफ या लार वगैरह आ गई तो कायोत्सर्ग के बीच में अगर उसको बाहर निकालते हो तो भी दोष है। फिर अंगस्पर्शनम, फिर कायोत्सर्ग करते करते ऐसे हाथ फेरते जाना शरीर में, तो ये भी एक दोष है। इस प्रकार चारित्र आदि ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। इसके